This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. The government is all set to move the Waqf Amendment Bill 2024 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, who also holds the charge of the Ministry of Minority Affairs, has said 8 hours have been allocated for the discussion on the bill in the House. Talking to the media at Parliament House, Mr. Rijiju said during the Business Advisory Committee meeting, it was agreed that the time for the discussion may be increased after taking the sense of the House. Mr. Rijiju added that the government is ready to answer all the questions over the bill. The minister alleged that opposition parties are opposing the legislation due to their appeasement politics. Talking to the media at Parliament House today, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the bill is being brought in the largest interest of the country.
Business Advisory Committee mein kuch parties ka mat tha 6 ghante discuss hona chahiye, kuch ka mat tha 4 ghante aur zyadatar opposition party ke log 12 ghante ka mang kiya. Tab beech mein 8 ghante ka charcha ka samay tay kiya gaya.
Union Minister Arjun Ram Meghwal said that the bill will ensure better management of Waqf properties.
इस बिल पर समय अलॉट किया गया, चर्चा होती गई, विपक्ष की तरफ से आया कि ज्यादा समय दिया जाए, लेकिन अंत में फिर तय हुआ कि 8 घंटे इस पे चर्चा होगी और जरूरत पड़ने पर वो स्पीकर साहब पे छोड़ दिया गया विषय। जहां तक ये विपक्ष के लोगों का आरोप का विषय है, इसमें कोई दम नहीं है। इसका कारण यह है कि संसद पहले भी इसको संशोधित या पास कर चुकी है, इसलिए संसद को अधिकार है। नंबर एक। नंबर दो, ये वक्फ के मैनेजमेंट का बिल है। मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए ना किसी न किसी संपत्ति का, तो ये तो मैनेजमेंट का बिल है और किसी तरह की जो शंकाएं जो भ्रम फैला रहे हैं वो सब निराधार है, बेबुनियाद है।
कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी सेड दैट हिज पार्टी विल अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म।
वक्फ बिल जो जेपीसी में आया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें कमियां देख संपूर्ण विपक्ष कुछ संशोधन दिए और सरकार ने एक नहीं। अगर उसी स्वरूप में आएगा तो ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा।
जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल सेड दैट दिस इज एन अमेंडेड बिल विच विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पसमांदा मुस्लिम्स।
आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है, ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995 2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब पसमांदा आम मुसलमानों का इसका फायदा।
India's renewable energy sector has achieved the highest ever capacity addition in the last financial year by installing 25 gigawatts. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi informed this while addressing a press conference in New Delhi yesterday. 13 fishermen who were arrested by the Sri Lankan Navy for allegedly cross-border fishing were released from prison and reached Chennai Airport, Tamil Nadu last night. These fishermen were arrested on February 19th and 20th from Rameshwaram in the Ramanathapuram district, allegedly for cross-border fishing. Subsequently, on March 30th, the Sri Lankan government released the 13 fishermen and handed them over to Indian embassy officials in Colombo. Israel has announced the elimination of all tariffs on imports from the United States. Israel's Prime Minister's office and the Finance and Economy Ministries announced this in a joint statement. The announcement came just a day before US President Donald Trump is expected to unveil new tariffs on all US trade partners. Prime Minister Narendra Modi has reflected on Navratri's sacred journey with worship of Ma Ambe. Sharing a prayer on social media, the Prime Minister urged everyone to listen to the prayer, which is dedicated to the forms of Devi Ma. Indian stock markets opened in the green today as heavyweight stocks continued to lift the market sentiment amid mixed global cues. At 9:20 a.m, Sensex was up 178 points at 76,203 and the Nifty was up 29 points. And that is the end of this news bulletin.